अगले दिन शाम का वक्त था। ईशान दुकान से लौटा तो रोज की तरह कमरे में जाने के बजाय आंगन में लगी चौकी पर चाचा जी के पास बैठ गया। कशिश ये देखकर मुस्कुरा उठी और आंखों ही आंखों में उसकी कोशिश को सराहते हुए पानी लेने चली गई। वहां बैठे चारों बड़े हैरान परेशान से पहले तो एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि आज ही अजूबा कैसे हो गया, पर जवाब किसी के पास नहीं था। उनकी हैरानी भरी निगाहें ईशान की ओर घूम गईं। ईशान पानी पी रहा था। कुछ पल तो उसने सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज किया, पर फिर अजीब लगने लगा। उसने उड़ती निगाहें उन सब पर डाली और भौं उचकाते हुए सवाल किया, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकता? नहीं नहीं बेटा, आपका ही घर है, आराम से बैठिए, बड़े पापा ने उसके सवाल पर हड़बड़ी में जवाब दिया और खुद जाने को उठ गए। ये देखकर ईशान ने बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली और झंझलाते हुए उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। चाय लेकर वहां पहुंची कशिश ने ये नज़ारा देखा तो उसके चेहरे पर गहरी निराशा के भाव उभर आए। उसने नाराज़गी भरी निगाहें जाते हुए ईशान पर डाली, फिर वहां मौजूद चारों लोगों के परेशान चेहरों को देखते हुए गहरी सांस छोड़ी और उनके पास चली आई। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सब ईशान के यूं उठकर चले जाने से परेशान हो गए थे, अब उनकी निगाहें कशिश की ओर घूम गईं। कशिश ने उनकी आंखों में झलकते सवाल को समझते हुए आगे कहना शुरू किया, वो असल में बात मिश्रा जी से जुड़ी है। उन्होंने आप सबको माफ तो कर दिया था, पर रिश्तों में सालों की नाराज़गी के कारण जो अजनबीपन और दूरियां आ गई हैं, उसके कारण वे नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। वे सब भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इसके लिए आप सबको उनकी मदद करनी होगी, उनका साथ देना होगा। मुझसे बेहतर तो आप सब जानते हैं कि वे कैसे हैं। आप सब उनके साथ सहज व्यवहार करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दूरियाँ कम हो जाएंगी, और उनके लिए भी आप सबके बीच खुलना मिलना, इस परिवार का हिस्सा बनकर आप सबको अपनाना आसान हो जाएगा। कशिश की बात सुनकर सब एक बार फिर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और इस बार उन सभी के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। अब उन्हें समझ आया था कि ईशान आज उनके पास क्यों बैठा था। ईशान की नाराज़गी खत्म हुई ये जानकर सभी खुश हो गए। कब से यही तो कोशिश कर रहे थे वे तैयार थे उसकी ओर कदम बढ़ाने को, आखिर उससे खुद से इतना दूर भी तो उन्होंने ही किया था। कौशल्या जी और महिमा जी ने तो कशिश को खूब लाड़ किया, आखिर आज ये चमत्कार उन्हें उसकी बदौलत ही तो देखने को मिला था। बड़े पापा और चाचा ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। यहाँ सबसे बात करने के बाद कशिश हाथ में ट्रे थामे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। एक बार फिर उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए थे। ईशान नीचे से उठकर चला आया था और हाथ मुँह धोकर अपल किनारे पर पैर नीचे लटकाए परेशान सा बैठा था। धड़ाम ही आवाज के साथ कशिश दरवाजा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई और आवाज से ईशान की नजरें भी उसकी ओर उठ गईं। कशिश के गुस्से और नाराजगी भरे चेहरे को देखते हुए वो कुछ कहता, उससे पहले ही कशिश ने ट्रे लगभग पटकते हुए उसके बगल में खड़ी थी और अगले ही पल ईशान की नाक पकड़कर जोर से हिला दी थी। गुस्सा ना आपका यहाँ बैठा रहता है, जब देखो बात बेबात पर सर पर सवार हो जाता है। ईशान उसकी इस हरकत से पहले तो चौंक गया, फिर उसने अपनी नाक को उसके चंगुल से आज़ाद करवाया और उसे सहलाते हुए छल्ला उठा, क्या कर रही हो कशिश, इतनी तेज़ पकड़कर क्या मेरी नाक उखाड़ना चाहती हो? हाँ, इरादे तो ऐसे ही हैं मेरे, ताकि ना नाक रहे और ना ही आपको गुस्सा आए, कशिश ने गुस्से से फुनकारते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ईशान आंखें फाड़े हैरत से उसे देखता रहा, फिर झुंझलाते हुए बोला, क्या हुआ है कशिश, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आप क्या करके आए हैं नीचे? सब देखा मैंने। इतनी सी बात पर गुस्से से भुनभुनाते हुए वहां से उठ गए। थोड़ा सब्र नहीं धर सकते हैं? क्या जरूरत थी ऐसे बेरुखी भरे लहजे से उनसे बात करने की? अगर दो बोल प्यार से बोल लेते तो क्या आपकी जुबान घिस जाती? कशिश एक बार फिर गुस्से में उस पर बरस पड़ी और अब ईशान को उसके इस रवैये के पीछे की वजह समझ आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने बेबस लाचार निगाहों से उसे देखा और मायूस स्वर में बोला, मुझसे नहीं होगा काशी, बहुत ऑकवर्ड हो गया था। उसके चेहरे के मायूसी भरे भाव देखकर कशिश का सारा गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया। उसकी स्थिति भी समझती थी वो, इसलिए अब की बार उसने ईशान की गर्दन में अपनी बाहों को लपेटा और मोहब्बत से नर्म लहजे में बोली, अब नहीं होगा ऑकवर्ड, मैंने सबसे बात कर ली, अब सब आपके साथ नॉर्मल रहेंगे तो आपके लिए भी सबके साथ सहज होना आसान हो जाएगा। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये दूरियां जल्दी ही कम हो जाएंगी। बस आप अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखा कीजिए, जरा जरा सी बात पर ज्वालामुखी बने फटने लगते हैं। कशिश ने मीठी सी शिकायत करते हुए मुंह बनाया और उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर ईशान ने मुस्कुराकर उसकी नाक को चूम लिया। कशिश ने नाक सिकोड़ते हुए आंखें छोटी छोटी करते हुए नाराजगी से उसे घूरा। ईशान ने उसकी कमर पर बांह लपेटते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और गालों पर झूलती अटखेलियां दिखाती लटों को अपनी उंगली में उलझाते हुए शोफ निगाहों से उसे निहारने लगा।
یوں بے باکی سے اتنے قریب مت آیا کرو، تمہاری قریبیوں کا گہرا اثر ہوتا ہے مجھ پر، دل بہکنے لگتا ہے اور دھڑکنیں ملن کو بےتاب ہو جاتی ہیں، من میں کچھ ارمان مچلتے لگتے ہیں، کہیں کوئی گستاخی ہو گئی تو پریشانی تمہیں ہی ہوگی۔ ایشان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات ختم کی، اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے کشش کے گال دہک اٹھے، کان بھٹی سے تپنے لگے اور شرم سے پلکیں جھک گئیں۔ اس کی باہوں کے گھیرے میں کشش بے چین سے مچل اٹھی اور لرستے لبوں سے دھیمی کمزور بکھری ہوئی آواز آئی، یہ کیسی باتیں، چھوڑیے مجھے، اب تو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایشان نے اس کی کمر پر لپٹی اپنی باہ کے گھیرے کو کستے ہوئے اسے اپنے ذرا اور قریب کر لیا۔ کشش نے چونکتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بکھرتے شبد گلے میں اٹک کر رہ گئے اور سانسیں ایشان کی سانسوں سے چاول جھیں، سینے میں موجود دل بےتابی سے زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آپ کی چائے ٹھنڈ، کشش نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ الفاظوں کو جوڑتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا کہ ایشان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے گھبراہٹ کے مارے سفید پڑے چہرے کو اپنی جذبے چھلکاتی آنکھوں سے نہارتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، چائے تو گرم ہو جائے گی، پر تم نے جو میرے سینے میں چاہت کے ادھورے ارمانوں کے انگاروں کو سلگائے ہیں ان کا کیا؟